नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में युवाओं के लिए असीमित अवसर उपलब्ध। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों से विकसित राजस्थान 2047 के निर्माण में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। देश में सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़कर 64% हुआ और राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड उपभोक्ता सेवाओं को बढ़ाने के लिए बड़ी योजना बना रही है। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में युवाओं के लिए असीमित अवसर उपलब्ध हैं। आज नवी मुंबई में नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि केंद्र ने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हाल ही पीएम सेतु योजना की घोषणा की है। इससे देश भर के आईटीआई एक साथ जुड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुंबई के नए एयरपोर्ट से सभी वर्गों को फायदा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि सरकार आम आदमी को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए तेजी से काम कर रही है।
आपको याद होगा, मैंने कहा था कि मेरा सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर कर सके। इस सपने को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी था कि देश में नए नए एयरपोर्ट बनाए जाए। हमारी सरकार ने इस मिशन पर गंभीरता से काम शुरू किया। बीते 11 साल में देश में एक के बाद एक नए एयरपोर्ट बनते चले गए। साल 2014 में हमारे देश में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे। आज भारत में एयरपोर्ट की संख्या 160 को पार कर गई।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों से विकसित राजस्थान 2047 के निर्माण में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया है। उन्होंने आज गुजरात के सूरत में प्रवासी राजस्थानी मीट को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात और राजस्थान मिलकर सशक्त औद्योगिक कॉरिडोर बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों को मिलकर राजस्थान को विश्व का जेम एंड ज्वेलरी हब बनाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अब हर साल प्रवासी राजस्थानी सम्मान पुरस्कार प्रदान करेगी। साथ ही उन्होंने प्रवासियों को 10 दिसंबर को जयपुर में होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस समारोह के लिए आमंत्रित किया। श्री शर्मा ने बताया कि 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू में से 7 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स धरातल पर उतर चुके हैं। रिप्स 2024 के तहत निवेशकों को 1,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी दी गई है। उन्होंने आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में निवेश का आमंत्रण दिया।
राजस्थान के जो मेरे प्रवासी भाई हैं, उन्होंने अपनी राजस्थान की मिट्टी की खुशबू जहाँ भी गए वहाँ उन्होंने बिखेरने का काम किया है। लेकिन धन्यवाद मैं इस बात का देना चाहता हूँ कि मेरा प्रवासी भाई किसी ना किसी सामाजिक सरोकार के कार्य से जुड़ा होता है। कई हम देखते हैं कि शिक्षा के मंदिरों से जुड़े हुए हैं, चिकित्सा के मंदिरों से जुड़े हुए हैं, कई गौशालाओं से जुड़े हुए हैं, कई आस्था के केंद्रों से जुड़े हुए हैं। जहाँ आवश्यकता है तो आगे सुधार के लिए हमेशा कोई ना कोई राजस्थानी आगे मिलता है।
कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल इंजीनियरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये उन सभी के लिए एक उपकरण है जो उत्पादकता बढ़ाने और अपनी आजीविका में सुधार के लिए तकनीक का उपयोग करना चाहते हैं। श्री चौधरी ने आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि कक्षा 6 से ही AI तैयारी पाठ्यक्रम शुरू किए जा चुके हैं और इसके लिए निःशुल्क ऑनलाइन सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 68वां सम्मेलन आज से बारबाडोस की राजधानी ब्रिज टाउन में शुरू हुआ। इसमें विभिन्न देशों के विधान मंडलों के अध्यक्ष हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय कॉमनवेल्थ एक वैश्विक साझेदार है जहां संवाद और सहयोग से सतत विकास पर चर्चा की जा रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। श्री देवनानी ने कहा कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल की सक्रिय मौजूदगी से भारत की संसदीय परंपरा को वैश्विक मंच पर बल मिलेगा। झुंझुनू के मेहरादासी गांव के शहीद सार्जेंट सुरेंद्र मोगा को देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान के लिए वायुसेना मेडल से सम्मानित किया गया है। 93वें वायुसेना दिवस पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने शहीद मोगा की वीरांगना सीमा मोगा को उनका मेडल प्रदान किया। सुरेंद्र मोगा ने ऑपरेशन सिंदूर में असाधारण साहस दिखाते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। भारत को अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ द्वारा सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़कर 64% हो गया है। श्री मांडविया ने कहा कि भारत का सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और पिछले एक दशक में इस क्षेत्र में उल्लेखनीय काम हुआ है। केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से सवाई माधोपुर जिले के कोतलपुरा जाटान में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जीएसटी बचत उत्सव और पोषण माह को लेकर किए गए इस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों और आम जन को जानकारी देने के लिए विभिन्न गतिविधियां हुई। इनमें जागरूकता रैली, संगोष्ठी, प्रदर्शनी, चित्रकला और पोस्टर प्रतियोगिता तथा प्रश्नोत्तरी शामिल हैं। ब्यूरो के प्रभारी अधिकारी नेमी चंद मीणा ने केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान पौष्टिक आहार की प्रदर्शनी भी लगाई गई। जोधपुर में भी केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से पीपाड़ के सरकारी विद्यालय में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और जीएसटी बचत उत्सव पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में अगले महीने से नाव से सफारी शुरू की जाएगी। पार्क प्रशासन इसकी तैयारियों में जुट गया है। बोट सफारी के माध्यम से सैलानियों को दुर्लभ प्रवासी पक्षियों को प्राकृतिक वातावरण में बहुत नजदीक से देखने का मौका मिलेगा। उद्यान निदेशक मानस सिंह ने बताया कि नाव चलाने से संबंधित सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है।
बोटिंग से संबंधित जो भी क्लियरेंसेस हमें नेवल ऑफिसर और आरटीओ की चाहिए होती है वो हमें प्राप्त हो चुकी हैं। बोट्स को हम इस बार थोड़ा और पेंट करवा के बर्ड्स के थीम में करके उनको और थोड़ा आकर्षक बना रहे हैं। हमारे पास दो तरह की बोट्स हैं, 6 सीटर्स और 4 सीटर। उनको हम शुरुआत करेंगे नवम्बर माह में, जब पेंटेड स्टॉक वो एल ब्लॉक और एन ब्लॉक में उनके बच्चे निकल आएंगे, जिससे उनका डिस्टर्बेंस कम से कम हो जाएगा। और ये ट्रिप लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की रहती है, जिसमें सभी को इस बार ये देखने को मिलेगा कि वहाँ पर पेंटेड स्टॉक के नेस्ट हैं, जो कि कभी 1980 और 1990 के दशक में देखने को मिलते थे। ये 30-40 साल बाद पेंटेड स्टॉक ने अपनी हिरॉनरी इधर शिफ्ट करी है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार बोटिंग में लोगों को और आकर्षक और अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी।
वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज हनुमानगढ़ से रामेश्वरम मदुरई के लिए विशेष ट्रेन रवाना हुई। विधायक संजीव बेनीवाल और अतिरिक्त जिला कलेक्टर उमेदीलाल मीणा ने इसे हरी झंडी दिखाई। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त ओम प्रकाश ने बताया कि इस गाड़ी में हनुमानगढ़ से 350 और सूरतगढ़ से 326 सहित कुल 676 यात्री तीर्थाटन के लिए गए हैं।
आज एक स्पेशल ट्रेन जो पूर्ण एसी है रामेश्वरम के लिए रवाना हुई है। यात्रियों की सुविधा के लिए सभी निःशुल्क व्यवस्थाएं की गई है, उन्हें सुखद वातावरण में तीर्थ यात्रा का अनुभव हो सके। वहाँ रहने, खाने, पीने, घूमने की सभी निःशुल्क व्यवस्थाएं, उनकी सुविधा के लिए एक गजेटेड अधिकारी इंचार्ज लगाए गए हैं। मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर, सभी मेडिसिन उपकरणों के साथ में ट्रेन में भेजे गए हैं और आशा है कि सभी यात्री सुखद माहौल में यात्रा सम्पन्न करेंगे। 15 तारीख को ये ट्रेन वापस लौट जाएगी।
राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड उपभोक्ता सेवाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से अगले 5 सालों के लिए बड़ी योजना बना रही है। आरएसजीएल के चेयरमैन टी रविकांत ने आज बोर्ड बैठक में बताया कि इस योजना के तहत कोटा, ग्वालियर और श्योपुर में नए सीएनजी स्टेशन खोले जाएंगे, साथ ही ज्यादा से ज्यादा परिवारों को पाइपलाइन से रसोई गैस से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि कंपनी अब एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस सेवाओं को भी बढ़ाएगी। 71वें वन्यजीव सप्ताह के समापन के मौके पर आज जिलों में विभिन्न आयोजन हुए। पाली जिले के देसूरी उपखंड क्षेत्र में सप्ताह के तहत आज जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली का उद्देश्य अरावली क्षेत्र के आसपास बसे आमजन को वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना था। इस मौके पर विद्यार्थियों के लिए वन्य जीव संरक्षण और वन्य जीवों की जानकारी विषय पर निबंध तथा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। वहीं सवाईमाधोपुर जिले में वन विभाग की ओर से वन्य जीव सप्ताह में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। बाड़मेर में आज शोभा यात्रा के साथ थार महोत्सव शुरू हुआ। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने गांधी चौक से शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि 2 दिन के इस उत्सव के दौरान रंग रेगिस्तान के थीम पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जाएंगे।
शाही लवाजमे के साथ निकली शोभा यात्रा मुख्य बाजार, स्टेशन रोड और नेहरू नगर होते हुए आदर्श स्टेडियम पहुंची, जहां गैर नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। इस दौरान आयोजित थार श्री, थार सुंदरी, मोच प्रतियोगिता, ढोल वादन, रस्सा कशी और पणिहारी मटका दौड़ जैसी रोचक प्रतियोगिताओं में आम जन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। धर्मेंद्र डाबी ने परंपरागत परिधान, आभूषण और व्यक्तित्व के आधार पर थार श्री का खिताब जीता। वहीं नक्षत्री थार सुंदरी चुनी गई। आदर्श स्टेडियम में आज आयोजित सांस्कृतिक संध्या में लोक कलाकार गायन, वादन और नृत्य की बेहतरीन प्रस्तुतियां देंगे। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
रेलवे के स्पेशल कैंपेन 5.0 के तहत अजमेर रेलवे स्टेशन पर अमृत संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मंडल रेल प्रबंधक राजू भूतड़ा और अन्य अधिकारियों ने यात्रियों से बात की। उन्होंने स्टेशन पर मौजूद यात्रियों की समस्याएं, सुझाव और अनुभवों को सुना। यात्रियों से मिली प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण कर रेलवे द्वारा जल्द ही सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। जोधपुर रेल मंडल की ओर से भी स्वच्छता पखवाड़े के तहत स्वच्छ परिसर दिवस मनाया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में युवाओं के लिए असीमित अवसर उपलब्ध। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों से विकसित राजस्थान 2047 के निर्माण में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। देश में सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़कर 64% हुआ। और राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड उपभोक्ता सेवाओं को बढ़ाने के लिए बड़ी योजना बना रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।